एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में।
ये ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ग्रंथ सार में आप सबका स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं चिमामांडा ंगोजी अडीची के एक बहुत ही प्रभावशाली उपन्यास अर्ध पीला सूर्य, यानी हाफ ऑफ अ येलो सन की।
हाँ, अडीची तो मतलब समकालीन अफ्रीकी साहित्य की एक बहुत बड़ी आवाज है। उनका लेखन पहचान, उपनिवेशवाद, नाइजीरियाई अनुभव, इन सबको बड़ी गहराई से पकड़ता है।
बिल्कुल। और अर्धपीला सूर्य, जो 2006 में आया और जिसे प्रतिष्ठित ऑरेंज प्राइज भी मिला, ये उपन्यास हमें सीधे 1960 के दशक के नाइजीरिया ले जाता है। खासकर वो 1967 से 70 वाला दौर नाइजीरियाई गृह युद्ध का, जिसे बियाफ्रा युद्ध भी कहते हैं।
हाँ, लेकिन जैसा आप कह रहे थे, ये सिर्फ एक युद्ध का उपन्यास नहीं है।
बिल्कुल नहीं,
ये धोखे की भी, पहचान और मानवीय जज्बे की कहानी है। वो आम लोग जो इतिहास के तूफान में फंस जाते हैं, उनकी कहानी।
सही कहा, कैसे उनकी जिंदगियां उस उथल पुथल से जुड़ जाती हैं।
तो आज की इस चर्चा में हम इसकी पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, पात्रों के जो भावनात्मक उतार चढ़ाव हैं, उनका सफर,
और जो मुख्य विषय हैं उपन्यास के, टर्निंग पॉइंट्स हैं, उन सब पर बात करेंगे।
बिल्कुल। ये उपन्यास हमें उस दौर की नब्ज दिखाता है जब नाइजीरिया आजादी की उम्मीदों से भरा था।
हाँ, एक नई सुबह जैसा माहौल।
लेकिन फिर कितनी जल्दी वो जातीय हिंसा और गृह युद्ध के अंधेरे में चला गया। एडीची दिखाती हैं कि कैसे निजी जिंदगियां और देश की राजनीति अलग नहीं रह सकती।
और वो शीर्षक भी अर्ध पीला सूर्य, बियाफ्रा के झंडे से लिया गया है। एक अधूरी उम्मीद का प्रतीक है ना, एक सपना जो पूरा नहीं हो पाया।
हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं कहानी की। 1960 के दशक की शुरुआत, नुक्का शहर। कैसा माहौल था वहां का?
नुक्का उस समय मतलब एक तरह का बौद्धिक केंद्र था, यूनिवर्सिटी शहर था, तो हवा में एक नई आजादी की ताजगी थी, भविष्य को लेकर उत्साह था। और यहीं पर हैं प्रोफेसर ओडनीबो,
गणित के प्रोफेसर।
हाँ, गणित के प्रोफेसर, लेकिन अपने क्रांतिकारी पैन अफ्रीकन विचारों के लिए ज्यादा जाने जाते थे।
उनका घर तो जैसे बुद्धिजीवियों का अड्डा बन गया था। देर रात तक बहसें चलती थीं अफ्रीका के भविष्य पर, नाइजीरिया पर।
मतलब विचारों का एक तूफान सा रहता होगा वहाँ।
बिल्कुल।
और इसी माहौल में एक बिल्कुल अलग दुनिया से आता है उगवू,
13 साल का लड़का।
हाँ, 13 साल का उगवू गाँव से आया है ओडनीबो के यहाँ हाउस बॉय बनकर। तो उसकी आंखों से हम उस शहरी पढ़ी लिखी दुनिया का अचरज देखते हैं। किताबें, अंग्रेजी में बातें, नल से आता पानी, ये सब उसके लिए नया है।
और वो एक बड़ा उत्सुक पर्यवेक्षक भी है ना, सब कुछ देखता है, सीखता है।
हाँ, बहुत संवेदनशील है, धीरे धीरे पढ़ना सीखता है और जैसे सब कुछ अपने अंदर समेटता जाता है।
अच्छा, फिर कहानी हमें लागोस ले जाती है, ओलान्ना से मिलवाती है। वो तो काफी अलग पृष्ठभूमि से है।
बिल्कुल अलग। ओलान्ना लागोस के एक बहुत अमीर, प्रभावशाली इग्बो परिवार से है, लंदन में पढ़ी लिखी, खूबसूरत, लेकिन वो अपने परिवार की उम्मीदों को, मतलब जो पारंपरिक सोच थी, उसको किनारे रखकर नुक्का आ जाती है,
अपने प्रेमी प्रोफेसर ओडेनिग्बो के पास।
हाँ, तो ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये उसका अपनी पहचान, अपनी स्वतंत्रता चुनने का भी प्रतीक है। उस जमाने के हिसाब से ये बड़ा कदम था।
और उसकी जुड़वा बहन है काइनेने, जो उससे बिल्कुल उलट है। ये दोनों बहनें कहानी में एक दिलचस्प तनाव पैदा करती हैं।
हाँ, बहुत दिलचस्प। काइनेने एकदम प्रैक्टिकल है, बिजनेस माइंडेड, थोड़ी इमोशनली दूर रहने वाली। वो पोर्ट हार्कोर्ट में अपने पिता का बिजनेस संभालती है, जहाँ ओलान्ना आदर्शवादी है, वहाँ काइनेने जमीनी हकीकत देखती है। उनके बीच प्यार भी है, जलन भी, बड़ा कॉम्प्लेक्स रिश्ता है।
और फिर एक बाहरी किरदार भी है, रिचर्ड चर्चिल, एक अंग्रेज। उसकी क्या भूमिका है?
रिचर्ड एक अंग्रेज लेखक है, वो नाइजीरिया आया है पुरानी इग्बूखू कला पर किताब लिखने, और वो काइनेने के तरफ आकर्षित होता है। उसका किरदार कई जरूरी सवाल उठाता है।
जैसे?
जैसे बाहरी व्यक्ति का नजरिया क्या होता है, संस्कृति को समझने की कोशिश और उसकी सीमाएं क्या हैं, और जिसे हम श्वेत विशेषाधिकार या व्हाइट प्रिविलेज कहते हैं, उसका भी सवाल उठता है। वो नाइजीरिया से प्यार तो करता है, पर क्या वो सच में यहाँ का हिस्सा बन पाता है, ये एक सवाल है जो बना रहता है।
तो शुरुआत में उम्मीदें हैं, रिश्ते हैं, बौद्धिक माहौल है, लेकिन ये शांति, ये टूटती कब है?
ज्यादा देर नहीं टिकती है शांति। 1966 में मिलिट्री कू हुए, पहले एक, फिर जवाबी कू, और उसके बाद नाइजीरिया में जातीय तनाव खासकर नॉर्थ में रहने वाले इग्बो लोगों के खिलाफ भयानक रूप ले लेता है।
और उपन्यास इस हिंसा को बड़े भयानक तरीके से दिखाता है। ओलान्ना का अनुभव, वो तो हिलाकर रख देता है।
हाँ, वो कानो नरसंहार का जो अनुभव है वो लान्ना का, वो उपन्यास का एक टर्निंग पॉइंट है। वो अपनी आंखों से देखती है कि कैसे इग्बो लोगों को मारा जा रहा है, और वो एक सीन है जहां एक माँ अपनी बेटी का कटा हुआ सिर एक लौकी के बर्तन में लेकर जा रही है। वो सीन दिमाग से निकलता नहीं है। वो हिंसा सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं रहती, वो ओलान्ना के मन पर एक ऐसा घाव बन जाती है जो कभी भरता नहीं। इडीची यहां दिखाती हैं कि राजनीतिक हिंसा कितनी पर्सनल और कितनी विभत्स होती है।
और इसी के बाद बियाफ्रा अलग होता है नाइजीरिया से,
वो आधा पीला सूरज वाला झंडा।
हाँ,
हजारों इग्बो लोग नॉर्थ से भागकर साउथ ईस्ट आते हैं, और फिर बियाफ्रा वनराज्य की घोषणा होती है। इग्बो लोगों के लिए वो एक उम्मीद थी, आत्मनिर्णय की, सुरक्षा की।
लेकिन वही घोषणा एक भयानक गृह युद्ध की शुरुआत भी बन गई।
बिल्कुल, तो आधा पीला सूरज उम्मीद भी है और त्रासदी का प्रतीक भी। उपन्यास इसी तनाव को दिखाता है।
और ये युद्ध, ये इन सभी मुख्य किरदारों की जिंदगियों को कैसी बदलता है। ऑडिन इग्बो से शुरू करते हैं, वो आदर्शवादी प्रोफेसर।
युद्ध ऑडिन इग्बो के आदर्शवाद को तोड़कर रख देता है। उसका जो समृद्धिक भौतिक आत्मविश्वास था, वो बमों और भुखमरी की हकीकत के सामने टिक नहीं पाता। वो टूट जाता है, शराब में डूबने लगता है,
और वो एक भूल भी कर बैठता है।
हाँ, एक कमजोर पल में अपनी माँ के उकसाने पर वो गांव की एक लड़की अमाला के साथ, और उससे एक बच्ची पैदा होती है।
ये सिर्फ एक व्यक्तिगत भूल नहीं है, ये कहीं ना कहीं उसके राजनीतिक और नैतिक पतन का भी प्रतीक बन जाता है। युद्ध कैसे बड़े बड़े आदर्शों को खोखला कर देता है, ये दिखता है।
ये बहुत तीखी टिप्पणी है। ओलान्ना का सफर तो और भी मुश्किल रहा होगा।
ओलान्ना का ट्रांसफॉर्मेशन कमाल का है। वो एक नाजुक सी लाड़ प्यार में पली लड़की से एक शरणार्थी बनती है, जो हर रोज बस जिंदा रहने के लिए लड़ रही है। कानों का सदमा झेलती है और इन इग्बो का धोखा झेलती है, लेकिन वो टूटती नहीं,
बल्कि और मजबूत हो जाती है। हाँ, वो और मजबूत होकर उभरती है। वो न सिर्फ खुद जिंदा रहती है, बल्कि ओडिन इग्बो और अमाला की बेटी बेबी को भी पूरे दिल से अपना लेती है। वो बच्ची जैसे माफी और मातृत्व की शक्ति का प्रतीक बन जाती है। युद्ध उसे असलियत से रूबरू कराता है, उसे एक योद्धा बना देता है।
और उग्वू, वो मासूम लड़का, युद्ध उसे कहां ले जाता है।
उग्वू का सफर शायद सबसे ज्यादा दर्दनाक है। उसे जबरदस्ती बियाफ्रा आर्मी में भर्ती कर लिया जाता है। युद्ध उसकी मासूमियत छीन लेता है। उसे ऐसी हिंसा देखनी पड़ती है, करनी पड़ती है, जिसका बोझ वो जिंदगी भर उठाता है।
खासकर वो एक घटना,
हाँ, एक गैंग रेप में उसकी भागीदारी, वो अपराध बोध उसे तोड़ देता है। लेकिन एडीची यहां एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ लाती हैं। यही दर्द, यही अनुभव उसे लिखने की वजह देता है।
वो लेखक बन जाता है।
हाँ, वो उस इतिहास को दर्ज करने का फैसला करता है जिसे दुनिया भुलाना चाहती थी। उसका लेखक बनना एडीची का एक तरह का तर्क है कि जिसने भोगा है वही शायद सबसे सच्ची कहानी कह सकता है।
ये बहुत गहरा पॉइंट है। अच्छा, काइने ने जो शुरू में थोड़ी अलग थलग सी लगती थी, उसमें क्या बदलाव आते हैं?
काइनेने का बदलाव भी बहुत नाटकीय है। युद्ध उसे पूरी तरह बदल देता है। रिचर्ड के साथ उसका रिश्ता सिर्फ जिस्मानी नहीं रहता, उसमें गहराई आती है, और वो अपनी सारी हिम्मत और प्रैक्टिकलिटी शरणार्थियों की मदद में लगा देती है। एक कैंप चलाती है, उसमें कमाल की करुणा और लीडरशिप दिखाई देती है।
वो ताकत का प्रतीक बन जाती है।
बिल्कुल, लेकिन अंत में वो गायब हो जाती है। ये एक पहेली की तरह है, इसका क्या मतलब हो सकता है?
हाँ, उसका वो रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाना उपन्यास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से है। वो उन लाखों लोगों का प्रतीक है जो युद्ध में खो गए, जिनका कुछ पता नहीं चला, जिनकी कहानियां अधूरी रह गईं। एडीची ने शायद जानबूझकर इसे अनसुलझा छोड़ा है, ये दिखाने के लिए कि युद्ध पीछे सिर्फ तबाही नहीं छोड़ता, ऐसे अनगिनत खालीपन और सवाल भी छोड़ जाता है।
और रिचर्ड, अंग्रेज लेखक, क्या वो अपनी किताब लिख पाया? नहीं, रिचर्ड अपनी किताब, जिसका टाइटल उसने सोचा था द वर्ल्ड वॉज साइलेंट वेन वी डाइड, दुनिया चुप थी जब हम मरे, वो पूरी नहीं कर पाता। वो बियाफ्रा का सपोर्टर है, वो दर्द महसूस करता है, पर वो हमेशा एक बाहरी आदमी ही रहता है।
उसकी सफेद चमड़ी उसे अलग रखती है।
हाँ, वो उस अनुभव को शायद उस तरह महसूस नहीं कर सकता जिसे वो लिखना चाहता है। ये अडीची का एक और इशारा है कि सहानुभूति की भी सीमाएं होती हैं। कुछ कहानियां शायद वही लिख सकते हैं जिन्होंने उन्हें जिया है।
उपन्यास युद्ध को सिर्फ पात्रों के जरिए नहीं दिखाता, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी पर जो उसका असर है, खासकर भूख का जिक्र बार बार आता है।
हाँ, अडीची युद्ध का सबसे क्रूर चेहरा भुखमरी के जरिए दिखाती हैं। लगातार भागना, बमबारी का डर, और सबसे बढ़कर क्वाशियोरकोर, वो कुपोषण से पीड़ित बच्चे, फूले हुए पेट, झड़ते बाल, खाली आंखें, वो तस्वीरें दिल दहला देती हैं।
ये दिखाता है कि कैसे भूख को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया।
बिल्कुल, बियाफ्रा को तोड़ने के लिए। भोजन की कमी और भोजन की यादें, ये शांति और युद्ध के बीच के फर्क को लगातार दिखाती हैं। शांति में भोजन उत्सव था, युद्ध में वो बस जिंदा रहने का सवाल बन गया।
और इन भारी मुश्किलों के बीच जो निजी रिश्ते हैं, वो भी तो आजमाए जाते होंगे। ओलाना और ओडेनिगबो, ओलाना और काइनेने।
बिल्कुल, ओडेनिगबो का धोखा ओलाना और उसके रिश्ते में एक बड़ी दरार डालता है। फिर ओलाना का बदला लेने के लिए रिचर्ड के साथ सोना, वो दोनों बहनों के बीच और कड़वाहट लाता है। लेकिन वही युद्ध, वही साझा त्रासदी उन्हें करीब भी लाती है।
बेबी की वजह से ओलाना और ओडेनिगबो फिर जुड़ते हैं।
हाँ, बेबी की जिम्मेदारी उन्हें एक साथ लाती है, हालांकि रिश्ते में वो पहले वाली बात नहीं रहती। और सबसे खास बात, सालों की जो राइवलरी थी ओलाना और काइनेने के बीच, वो खत्म होती है। वो एक दूसरे का सहारा बनती हैं, उनके बीच एक गहरा बॉन्ड बनता है। एडीजी दिखाती हैं कि संकट में इंसान के जज्बात कितने उलझे हुए होते हैं, प्यार, नफरत, जलन, माफी, सब एक साथ।
युद्ध खत्म होता है जनवरी 1970 में, बियाफ्रा सरेंडर कर देता है, लेकिन अंत कैसा है? क्या कोई राहत मिलती है?
युद्ध खत्म होता है, पर कोई जीत का जश्न नहीं है, सिर्फ तबाही है, नुकसान है और एक गहरा खालीपन। काइनेने गायब हो चुकी है, बचे हुए लोग ओलाना, ओडेनिगबो, बेबी और उगुवू, जो मानसिक रूप से काफी घायल हैं, वो नुक्का लौटते हैं। शहर खंडर बन चुका है, उन्हें अपनी जिंदगी राख से दोबारा शुरू करनी है।
और यहीं उपन्यास का वो बड़ा राज खुलता है, उगुवू की किताब।
हाँ, बिल्कुल अंत में हमें पता चलता है कि ये पूरी कहानी, ये उपन्यास जो हम पढ़ रहे थे, वो असल में उगुवू ने लिखा है। और उसकी किताब का शीर्षक वही है जो रिचर्ड ने सोचा था, द वर्ल्ड वॉज साइलेंट वेन वी डाइड।
तो पूर्व हाउस बॉय अब इतिहासकार बन गया है।
हाँ, अपने लोगों का इतिहासकार। ये कहानी कहने की ताकत पर, इतिहास को दर्ज करने की जिम्मेदारी पर और चुप्पी को तोड़ने के महत्व पर एक जबरदस्त बयान है। असली कहानी वो लिख रहा है जिसे हाशिए पे रखा गया था।
तो अगर हम उपन्यास के जो मुख्य विषय हैं उनको समेटें, तो क्या खास बातें निकलती हैं?
सबसे पहले तो पर्सनल और पॉलिटिकल का वो अटूट रिश्ता। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे घरों में, हमारे रिश्तों में खटता है।
सही।
दूसरा, युद्ध की क्रूरता और उसकी मानवीय कीमत क्या होती है। तीसरा, पहचान का सवाल। नाइजीरियाई होना, इग्बो होना, बियाफ्रा होना, इसका क्या मतलब है? ये पहचानें कैसे बनती टूटती हैं?
और उपनिवेशवाद की जो विरासत है, उसका जिक्र भी जरूरी है ना? कैसे अतीत आज को प्रभावित करता है।
बिल्कुल, कॉलोनियलिज्म की लेगेसी, आजादी के बाद भी उसका समाज और राजनीति पर जो असर रहा, वो एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि है। शायद उन्हीं बंटवारों ने गृहयुद्ध की जमीन तैयार की।
और इसके अलावा,
प्यार के अलग अलग रूप, रोमांटिक, पारिवारिक, देश प्रेम और संकट में उनकी परीक्षा, महिलाओं का लचीलापन और उनकी ताकत। ओलाना और काइनेने दोनों बहुत सशक्त पात्र हैं, और जैसा हमने कहा, कहानी कहने की शक्ति और जिम्मेदारी।
गाना,
हाँ, वो मुख्य रूप से उगु, ओलाना और रिचर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी कहती हैं। इससे हमें घटनाओं की एक पूरी मल्टी डायमेंशनल तस्वीर मिलती है। हम एक ही चीज को अलग अलग तरह से महसूस करते हैं।
और समय का आगे पीछे जाना,
वो जो बार बार अतीत की शांति और वर्तमान के युद्ध के बीच कहानी घूमती है, उस खोई हुई दुनिया और आज की ट्रेजेडी के बीच के कॉन्ट्रास्ट को और गहरा करता है। पाठक को लगातार याद दिलाया जाता है कि क्या कुछ छिन गया है।
प्रतीकों का इस्तेमाल भी बहुत शक्तिशाली है।
बहुत। वो आधा पीला सूरज तो है ही, पात्रों के बाल उनकी हालत का प्रतीक बन जाते हैं। रिचर्ड की वो इग्बो उकू कलाकृतियां नाइजीरिया की गहरी सांस्कृतिक जड़ों का प्रतीक है।
भाषा का प्रयोग भी,
हाँ, इग्बो कहावतों का, नाइजीरियाई अंग्रेजी का इस्तेमाल कहानी को बहुत ऑथेंटिक बनाता है। और भोजन और भूख के वो बिंब, वो शांति और युद्ध के जीवन मृत्यु वाले फर्क को दिखाते हैं।
कोई खास लाइन या डायलॉग जो याद रह गया हो?
ओडेनिगबो का वो तकिया कलाम, अगर ऐसा मामला है तो हमें मामले के बारे में कुछ करना चाहिए। शुरू में कितना आदर्शवादी लगता है, बाद में कितना खोखला। और उगुवू की किताब का टाइटल, दुनिया चुप थी जब हम मरे, ये पंक्ति, ये बियाफ्रा की त्रासदी और दुनिया की उदासीनता पर शायद सबसे शक्तिशाली टिप्पणी है, आज भी गूंजती है।
तो अंत में अर्ध पीला सूर्य हमें क्या सिखाता है? ये आज भी क्यों इतना जरूरी उपन्यास है?
मुझे लगता है ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास के जो बड़े बड़े नैरेटिव होते हैं उनके पीछे अनगिनत लोगों की अपनी कहानियां, उनके दुख और उनके संघर्ष छिपे होते हैं। ये मानवीय गरिमा और मुश्किल हालात में भी टिके रहने की एक अविस्मरणीय कहानी है।
और ये भी कि अपनी कहानी कहना, अपनी सच्चाई बयान करना कितना ज़रूरी है, खासकर तब जब दुनिया शायद सुनना ना चाहे या चुप रहे। ये यादों की, प्यार की और सच कहने की ताकत का आख्यान है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।